एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां अगर किसी की फसल बर्बाद हो जाए तो मदद के लिए कोई सरकारी राहत कोष नहीं है
और ना ही कोई बैंक।
सही बात है, यानी अगर अपना बिजनेस शुरू करना हो और लोन चाहिए तो बैंक नहीं है, और अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो जाए तो न्याय मांगने के लिए कोई पुलिस या अदालत भी नहीं है।
आज के जमाने में तो ये सोचना भी डरावना लगता है।
वही तो, आज 29 अगस्त 2026 है और आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ खरीदना हो तो अमेज़न पर जाएंगे, लोन चाहिए तो बैंक जाएंगे, पर बिना इन संस्थाओं के कोई इंसान जिंदा कैसे रहेगा?
बिल्कुल, लेकिन सच तो ये है कि मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर पहली शताब्दी की रोमन और भूमध्य सागरीय दुनिया यानी मेडिटेरेनियन दुनिया बिल्कुल ऐसी ही चलती थी। उस समय संस्थाओं का नहीं बल्कि इंसानों का राज था।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज की इस गहरी छानबीन में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं।
हाँ, और आज की इस चर्चा का आधार है डॉक्टर डेविड डी सिल्वा की किताब द कल्चरल वर्ल्ड ऑफ द न्यू टेस्टमेंट का सेशन 3, जिसका विषय है संरक्षण और पारस्परिकता यानी पैट्रोनेज और रेसिप्रोसिटी।
और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे उस वक्त आप क्या जानते हैं से ज्यादा ये मायने रखता था कि आप किसे जानते हैं, कैसे इस एक नियम ने उनके समाज, राजनीति और यहां तक कि धर्म को भी आकार दिया।
बिल्कुल सही कहा, आज की दुनिया में किसे जानते हैं को हम भाई भतीजावाद या करप्शन कह देते हैं।
हाँ, सिफारिश लगाना जिसे कहते हैं।
वही, लेकिन उस प्राचीन दुनिया में ये कोई बेईमानी नहीं थी, ये जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था। इसलिए अगर हमें उस समाज को समझना है तो हमें उस वक्त के एक आम इंसान की नजर से चीजों को देखना होगा।
मतलब किसी आम किसान की नजर से?
हाँ, मान लीजिए एक किसान को अकाल के समय अनाज की जरूरत पड़ गई तो वो किसी दफ्तर थोड़ी जाता था, वो अपने इलाके के सबसे साधन संपन्न और ताकतवर व्यक्ति के पास जाता था।
अच्छा,
इस ताकतवर व्यक्ति को पेट्रन या संरक्षक कहा जाता था और जो मदद मांगने जाता था वो उसका क्लाइंट कहलाता था। पहली सदी के एक बहुत मशहूर रोमन दार्शनिक थे सेनेका। उन्होंने बड़ा साफ लिखा है कि ये जो एहसान लेना और देना है ना, ये वास्तव में मानव समाज को जोड़े रखने वाला मुख्य गोंद है।
एक सेकंड, ये गोंद सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसा दिखता था? क्या ये कुछ कुछ द गॉडफादर फिल्म के उस शुरुआती सीन जैसा नहीं है?
अरे वाह, कौन सा सीन! हॉलीवुड की वो फिल्म वाकई उस प्राचीन भूमध्य सागरीय संस्कृति की व्यवस्था को बहुत बखूबी दिखाती है।
है ना?
बिल्कुल, जब कोई पेट्रन किसी क्लाइंट की मदद करता था, जैसे उसे जमीन दे दी या कर्ज चुका दिया, तो वो कोई मुफ्त की चैरिटी नहीं होती थी।
एक कैच होता था।
हाँ, क्लाइंट को पता होता था कि वो ये पैसा कभी वापस नहीं कर पाएगा, तो इसके बदले में उसे अपनी आजादी का एक हिस्सा गिरवी रखना पड़ता था।
मतलब एक तरह से वो जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन जाता था। पर क्या इसका कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता था, स्टैम्प पेपर जैसा कुछ?
नहीं नहीं, कोई कागजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, लेकिन सामाजिक दबाव किसी भी कानूनी दस्तावेज से ज्यादा मजबूत था उस वक्त।
अच्छा,
क्लाइंट को एक बहुत ही गहरी वफादारी निभानी होती थी, जैसे रोज सुबह उठकर अपने पैट्रन के घर जाना, उसे सलाम करना।
वाह, रोज सुबह?
हाँ, रोज, और बाजार में, समाज में, हर जगह जाकर अपने पैट्रन का गुणगान करना होता था, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी होती थी। और जब भी पैट्रन को कोई राजनीतिक या शारीरिक काम हो,
जैसे चुनाव में भीड़ जुटानी हो या किसी विरोधी को डराना हो,
एकदम सही, ऐसे कामों के लिए क्लाइंट को हमेशा हाजिर रहना पड़ता था। और देखिए, जो पैट्रन जितने ज्यादा क्लाइंट्स की मदद करता था, समाज में उसकी ताकत और उसका पावर बेस उतना ही बड़ा हो जाता था।
ये तो पूरा एक माफिया स्टाइल नेटवर्क लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे यहाँ एक चीज समझ नहीं आ रही।
हाँ, पूछिए।
मान लीजिए कोई किसी जमींदार का क्लाइंट है और उस क्लाइंट के घर में कोई बीमार पड़ गया, उसे किसी खास दवा या किसी वैद्य की जरूरत है, पर उसके जमींदार पैट्रन के पास वो चीज है ही नहीं।
तो वो क्या करेगा?
हाँ, वही, क्या उसे अब किसी दूसरे पैटर्न के पास जाना होगा मदद के लिए?
यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक पैटर्न की सबसे बड़ी ताकत हमेशा ये नहीं होती थी कि वो अपनी जेब से क्या दे सकता है।
तो फिर क्या होती थी?
उसकी सबसे बड़ी ताकत ये होती थी कि वो आपको किससे मिलवा सकता है।
ओ, मतलब नेटवर्किंग।
हाँ, इसे ब्रोकरेज या बिचौलिए का काम कहते थे। प्राचीन साहित्य में इसकी बहुत चर्चा है। जैसे सोफोक्लीज के मशहूर नाटक ओडिपस द किंग में एक किरदार है क्रियोन, अब क्रियोन के पास खुद की कोई सेना या खजाना नहीं था,
पर लोग उसके पास क्यों जाते थे?
क्योंकि राजा ओडिपस उसकी हर बात सुनता था।
अच्छा, उसके पास राजा तक एक्सेस था।
बिल्कुल, इसीलिए लोग खरीदों को भार देते थे ताकि वो राजा से उनका काम करवा सकें। एक असली ऐतिहासिक उदाहरण भी है इसका, रोमन गवर्नर प्लिनी का।
प्लिनी?
हाँ, प्लिनी अपने इलाके का बड़ा गवर्नर था, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन उसकी असली ताकत ये थी कि उसकी रोमन सम्राट ट्रेजन तक सीधी पहुंचती।
अच्छा, तो वो सम्राट से अपने लोगों के लिए फेवर मांगता था।
हाँ, एक बार प्लिनी अपने एक वफादार मसाज करने वाले को यानी मसर को रोमन नागरिकता दिलाना चाहता था।
और नागरिकता देना तो सम्राट का ही काम था उस वक्त।
बिल्कुल, नागरिकता कोई छोटी चीज नहीं थी, तो प्लिनी ने सम्राट के सामने अपने उस मसर के लिए ब्रोकर का काम किया। इससे उस आदमी को नागरिकता मिल गई और इलाके में प्लिनी का रुतबा और बढ़ गया कि देखो भाई साहब, गवर्नर तो सीधे सम्राट से काम करवा लेते हैं।
क्या बात है, मतलब उस जमाने में असली करेंसी पैसा नहीं बल्कि नेटवर्किंग और पहुंच थी।
एकदम।
लेकिन क्या ये सारी व्यवस्था सिर्फ अमीर और गरीब या ताकतवर और कमजोर के बीच ही चलती थी, या जो बराबरी वाले थे उनके बीच भी ये लेन देन चलता था?
नहीं नहीं, ये तो समाज के हर स्तर पर था। छठी सदी ईसा पूर्व के यूनानी लेखक थे हेसियोड। उन्होंने किसानों को एक बड़ी अच्छी सलाह दी थी।
क्या सलाह दी थी?
उन्होंने कहा था कि अगर पड़ोसी से बोने के लिए बीज उधार लो तो वापस करते समय हमेशा जितना लिया है उससे थोड़ा ज्यादा दो।
थोड़ा ज्यादा? ये क्या एक तरह का ब्याज यानी इंटरेस्ट था?
पैसे वाला ब्याज नहीं, ये रिलेशनशिप का ब्याज था। हेसियोड का तर्क ये था कि अगर आज तुम थोड़ा ज्यादा दोगे तो अगली बार जब तुम्हारे खेत में सूखा पड़ेगा तो पड़ोसी खुशी खुशी मदद करेगा।
सही बात है,
आगे के लिए रास्ता खुला रखना।
हाँ।
और यही नियम राजनीति की बड़ी बिसात पर बराबरी वालों पर भी लागू होता था।
कैसे?
जैसे बाइबल में हेरोड एंटिपास और पायलट का जिक्र आता है। अब ये दोनों एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक दुश्मन थे और करीब करीब बराबर हैसियत के थे। लेकिन जब पायलट ने हेरोड को एक सम्मान दिया या कहीं एक एहसान किया तो वो दोनों इसी लेन देन के जरिए राजनीतिक दोस्त बन गए। उस एक एहसान ने उनके बीच के सभी तनाव खत्म कर दिए।
वाह, ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उस वक्त का पूरा समाज एहसानों के एक बहुत बड़े मकड़जाल में फंसा हुआ था।
बिल्कुल फंसा था।
पर एक बात सोचने वाली है।
हाँ।
आज भी जब हम रोम या ग्रीस के प्राचीन शहरों के खंडर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे शिलालेख, बड़े बड़े फव्वारे, स्टेडियम या मंदिर मिलते हैं।
हाँ, मिलते।
और उन पर लिखा होता है कि ये फलाने अमीर आदमी ने बनवाए थे। तो क्या ये बड़े स्मारक बनाने वाले अमीर लोग भी पैटर्न माने जाते थे? मतलब क्या उस फव्वारे से पानी पीने वाला पूरा शहर उस एक अमीर इंसान का कर्जदार हो जाता था?
ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है जिसे समझना चाहिए, सार्वजनिक दान और व्यक्तिगत संरक्षण के बीच का अंतर।
अच्छा।
जब कोई अमीर व्यक्ति शहर के लिए कोई फव्वारा या स्टेडियम बनवाता था तो वो दान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होता था। और रोमन कानून के हिसाब से जो चीज पूरे शहर की है उसके लिए कोई एक नागरिक व्यक्तिगत रूप से कर्जदार नहीं होता। पूरा शहर उस अमीर इंसान का सम्मान जरूर करता था, पत्थर लगवाता था उसके नाम के, चुनाव में वोट भी देता था।
पर कोई आम नागरिक उसका गुलाम या सीधा क्लाइंट नहीं बन जाता था, है ना?
एकदम सही। वो सार्वजनिक काम एक तरह से पब्लिक रिलेशंस था, लेकिन जो व्यक्तिगत पैटर्न क्लाइंट का रिश्ता था वो एक एक व्यक्ति के साथ बनता था।
और शायद वो ज्यादा गहरा होता होगा।
बहुत गहरा। ये इतना गहरा होता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। अगर किसी किसान के दादा ने किसी जमींदार के दादा से मदद ली थी
और अगर वो कर्ज चुकाया नहीं गया,
हाँ,
तो आज वो किसान उस जमींदार के पोते का वफादार क्लाइंट होगा।
ये एक तरह की पारिवारिक विरासत होती थी।
एक मिनट, अगर उस समय के इंसानों का पूरा दिमाग इसी तरह के लेन देन, एहसान और वफादारी पर चलता था तो क्या वो भगवान को भी इसी नजर से देखते थे? क्योंकि इंसान तो धर्म को भी अपने ही चश्मे से देखता है।
अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो आपने बिल्कुल सही नब्स पकड़ी है। उस समय के धर्म का पूरा ढांचा इसी पैटर्न क्लाइंट सिस्टम की परछाई था। देवता कोई दूर बैठे आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर पैटर्न थे,
जो ऐसी चीजें दे सकते थे जो कोई इंसान नहीं दे सकता।
बिल्कुल, जैसे अच्छी फसल, बारिश या युद्ध में जीत।
तो फिर ये जो पुजारी होते थे, प्रीस्ट, इनका क्या रोल था?
पुजारी वास्तव में ब्रोकर थे।
क्या
मतलब? पुजारी भगवान और इंसान के बीच बिचौलिए का काम करते थे। हाँ जी, किसी को भी हैरानी होगी ये जानकर कि पुजारियों के लिए जो प्राचीन लैटिन शब्द इस्तेमाल होता है पॉन्टिफेक्स,
पॉन्टिफेक्स
हाँ, उस शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है पुल बनाने वाला या ब्रिज बिल्डर। पुजारी इंसानों की प्रार्थनाएं और बलियां देवताओं तक ले जाते थे और देवताओं का आशीर्वाद इंसानों तक लाते थे, वो ब्रिज थे।
वाह, ये तो अब आज की बहुत सी धार्मिक मान्यताओं से मिलता जुलता लगता है। पर मैंने अक्सर इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि प्राचीन रोम या ग्रीक के धर्म को डोम उत देस कहा जाता था,
जिसकी मीनिंग होती है मैं देता हूं ताकि तुम दो।
हाँ वही, मतलब मैं भगवान को 100 बकरियों की बलि चढ़ाऊंगा इस उम्मीद में कि भगवान मुझे लॉटरी जिता दें या युद्ध जीता दें। क्या ये एक तरह का रिश्वतबाजी नहीं था?
और हमारे स्रोत यानी डॉक्टर डिसिल्वा इसे बहुत स्पष्ट तरीके से तोड़ते हैं। असलियत में ये सिस्टम रिश्वतबाजी या डुकिया देस नहीं था, बल्कि डुकिया डिस्टी था।
डुकिया डिस्टी,
हाँ, जिसका मतलब है मैं देता हूँ क्योंकि तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिया है।
रुके रुके, तो आप कह रही हैं कि वो भगवान की पूजा डर के मारे या फ्यूचर के लालच में नहीं, बल्कि अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए करते थे?
बिल्कुल,
ये तो धर्म की पूरी परिभाषा ही पलट देता है।
वही तो, ये एक तरह से कृतज्ञता या आभार जताने का तरीका था। इंसान देवताओं को इसलिए पूजते थे क्योंकि देवताओं ने उन्हें पहले ही जीवन, सुरक्षा और साधन दे दिए थे। इंसान वो बड़ा कर्ज कभी नहीं चुका सकता था, इसलिए वो बलि और पूजा के जरिए बस अपनी वफादारी साबित करता था।
क्या इसका राजनीति से जुड़ा कोई ऐतिहासिक उदाहरण भी है जहां किसी इंसान को इसी लॉजिक से भगवान मान लिया गया हो?
रोमन सम्राट ऑगस्टस का उदाहरण इसके लिए सबसे बेहतरीन है। ऑगस्टस ने भूमध्य सागरीय दुनिया में दशकों तक चलने वाले खूनी गृह युद्ध को खत्म किया था
और शांति स्थापित की थी।
हाँ, जिसे पैक्स रोमाना कहा गया। उस समय के आम लोगों के लिए ये शांति और सुरक्षा किसी ईश्वरीय उपहार से कम नहीं थी। ऑगस्टस ने उन पर इतना बड़ा एहसान किया था कि वो इसे किसी भी भौतिक चीज या पैसे से चुका ही नहीं सकते थे।
तो उन्होंने क्या किया इस कर्ज को चुकाने के लिए?
पूर्वी भूमध्य सागर के लोगों ने ऑगस्टस को कृतज्ञता जताने के लिए भगवान का दर्जा दे दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी।
बाप रे।
आज लोग इसे चापलूसी या अंधभक्ति कह सकते हैं, लेकिन उस समय के नजरिए से देखें तो ये एहसान चुकाने का सबसे ऊंचा और पवित्र तरीका था।
यहाँ मुद्दा वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब हम लोग एहसान, उपहार और कृतज्ञता की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक शब्द बार बार गूंज रहा है, ग्रेस या अनुग्रह। आज के समय में ग्रेस शब्द सिर्फ चर्च की प्रार्थनाओं में या धार्मिक किताबों में सुनाई देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये थोड़ी कहते हैं कि यार तुमने मुझ पर बड़ा ग्रेस किया।
सही बात है,
लेकिन प्राचीन दुनिया में इस शब्द का क्या मतलब था?
ये समझना बहुत जरूरी है कि पहली सदी में जब बाइबल के नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट जैसी किताबें लिखी जा रही थीं, तब ग्रेस, जिसे यूनानी भाषा में चैरिस कहा जाता था,
चैरिस,
हाँ चैरिस, वो कोई धार्मिक या आध्यात्मिक शब्द नहीं था। तब ये रोजमर्रा का, बाजार का और समाज का एक आम शब्द था।
तो आम बोलचाल में इस चैरिस का मतलब क्या होता था?
इस शास्त्र के तीन मुख्य अर्थ होते थे और ये तीनों एक चेन की तरह जुड़े थे। पहला अर्थ था मदद करने या देने की इच्छा, जिसे हम फेवर कहते हैं,
ठीक है।
दूसरा अर्थ था वो असल चीज या उपहार जो दिया गया है, जैसे कि कर्ज माफी या कोई नौकरी। और तीसरा अर्थ था उस उपहार के बदले में मिलने वाली कृतज्ञता या वफादारी।
ओ, तो ये तीनों चीजें मिलकर ग्रेस बनती थी।
बिल्कुल,
मतलब ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं थी, ये पूरा एक चक्र था। किसी ने इच्छा जताई, उपहार दिया और सामने वाले ने धन्यवाद के साथ वफादारी वापस की।
एकदम सही। और इसे उस समय की कलाकृतियों में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया था। अगर कोई आज भी इटली या ग्रीस के म्यूजियम में जाए तो वहां तीन देवियों यानी द थ्री ग्रेसेस की मूर्तियां मिलेंगी।
अच्छा,
ये तीन देवियां एक घेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं।
इसका क्या अर्थ था?
दार्शनिक सेनेका ने इसका बड़ा गहरा अर्थ बताया है। उन्होंने कहा कि एक देवी वो है जो उपहार देती है, दूसरी वो है जो उपहार लेती है, और तीसरी वो है जो कृतज्ञता के रूप में उसे वापस लौटाती है। ये एक कभी न टूटने वाला चक्र है।
वाह, ये इमेज तो वाकई बहुत पावरफुल है। अगर मैं इसे आज के कॉर्पोरेट या नेटवर्किंग के नजरिए से देखूं, मान लीजिए कोई बेरोजगार है, उसके एक सीनियर ने अपनी रेपुटेशन दांव पर लगाकर उसे एक बहुत अच्छी जॉब दिलवा दी, और जॉब मिलने के बाद उसने ना तो कभी उन्हें थैंक्स बोला, ना मैसेज किया, और जब उन्हें मदद की जरूरत पड़ी तो उसने फोन भी नहीं उठाया। तो उसकी इंडस्ट्री में क्या हालत होगी?
उसकी रेपुटेशन तो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी।
वही तो, ये वैसा ही है जैसे उसने उन तीन देवियों की उस पवित्र नृत्य का घेरा ही तोड़ दिया हो, या उनके पैर पर पैर रख दिया।
ये बहुत ही बेहतरीन तुलना की आपने, और सच में उस वक्त कृतज्ञता यानी एहसान फरामोश होने को एक बहुत बड़ा सामाजिक पाप माना जाता था। सेनेका का तो यहाँ तक कहना था कि अगर एहसान वापस नहीं किया तो उस पवित्र नृत्य को अपवित्र कर दिया गया। समाज ऐसे इंसान का सीधा बहिष्कार कर देता था।
तो फिर उस समाज में एक अच्छा पैटर्न या एक अच्छा क्लाइंट बनने के अलिखित नियम क्या थे?
एक अच्छे पैटर्न को हमेशा ये सोचकर देना चाहिए कि इससे सामने वाले का भला हो, ना कि ये सोचकर कि मुझे तुरंत इससे क्या फायदा होगा। उसे हमेशा सद्गुणी लोगों को दान देना चाहिए।
ठीक है।
हालांकि दार्शनिकों का ये भी कहना था कि देवताओं की नकल करते हुए कभी कभी उन लोगों को भी देना चाहिए जो ऐसा नहीं मानते।
ऐसा क्यों?
ठीक वैसे ही जैसे सूरज अच्छे और बुरे दोनों पर अपनी रोशनी डालता है ना।
बिल्कुल
वैसे ही। लेकिन लेने वाले यानी क्लाइंट के लिए नियम बहुत सख्त थे।
वो तो होंगे ही, लेकिन अगर क्लाइंट बहुत गरीब है तो वो एहसान चुकाएगा कैसे? पैसे तो उसके पास है नहीं।
वो पैसे से नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी से एहसान चुकाता था। पहला, सम्मान देकर, हर जगह जाकर पैट्रन की तारीफ करके। दूसरा, सेवा करके। पैट्रन को जब भी किसी काम की जरूरत हो बस हाजिर रहो। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी अटूट वफादारी से।
वफादारी, क्या इतिहास में कोई ऐसा वाक्या है जहां किसी ने अपनी वफादारी ऐसे साबित की हो तब भी जब उसे पता हो कि ऐसा करने से उसकी जान जा सकती है?
हेरोद की कहानी इस बात को बहुत शानदार तरीके से समझाती है।
अच्छा।
हेरोद को इतिहास में एक क्रूर यहूदी शासक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसे इस पैट्रन क्लाइंट गेम के नियम बहुत अच्छे से पता थे। हेरोद रोमन जनरल मार्क एंटनी का बहुत वफादार क्लाइंट था, लेकिन एक बहुत बड़े रोमन गृह युद्ध में मार्क एंटनी ऑगस्टस से हार गया और मारा गया।
मतलब हेरोद का जो पैट्रन था वही हार गया। अब हेरोद तो हारने वाली टीम में था, तो उसकी जान पर बनाई होगी।
बिल्कुल। अब हेरोद के पास भागने या छुपने का विकल्प था, लेकिन वो सीधे विजेता अगस्टिस के पास गया। उसने वहां जाकर कोई बहाना नहीं बनाया कि जी मैं तो मजबूर था।
तो क्या कहा उसने?
उसने अगस्टिस की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं एंटनी का वफादार दोस्त और क्लाइंट था और मैंने अंत तक उसका साथ दिया। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। आपने मेरे पैट्रन को हरा दिया है, लेकिन अब अगर आप मुझे जिंदा छोड़ते हैं तो मैं आपको वही अटूट वफादारी दे सकता हूं जो मैंने उसे दी थी।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। अगस्टस उसे वहीं उसी वक्त मरवा सकता था।
हाँ, लेकिन अगस्टस इस ईमानदारी और वफादारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हेरोद को माफ कर दिया और उसे अपना क्लाइंट बना लिया।
वाह।
अगस्टस को समझ आ गया था कि ये आदमी एक बार जिसका हो जाता है फिर उसे धोखा नहीं देता, और इसी भरोसे और वफादारी को उस समय यूनानी भाषा में पिस्तिस कहा जाता था।
पिस्तिस?
हाँ।
जिसका हम लोग अक्सर अनुवाद आस्था या फेथ करते हैं।
हाँ, वही।
मतलब ये कोई सिर्फ दिमाग में मान लेने वाली धार्मिक श्रद्धा नहीं थी।
पिस्तिस का मतलब था किसी पैटर्न के विश्वसनीयता और क्लाइंट की अपनी जान की बाजी लगा देने वाली वफादारी।
एकदम सही।
ये एक एक्शन से भरा शब्द था, सिर्फ ख्यालों का शब्द नहीं।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज की इस पूरी चर्चा में हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, पैटर्न, ब्रोकर, कैरिस यानी ग्रेस और पिस्टिस यानी विश्वास, ये सब एक साथ कैसे काम करते थे? क्या हम किसी एक असली घटना में इस पूरे मकड़ी जाल को एक साथ काम करते हुए देख सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। बाइबल के लूक अध्याय 7 में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो इस पूरे सिस्टम की एक बेहतरीन केस स्टडी है।
अच्छा, क्या है उसमें?
घटना ये है कि एक रोमन सेंचुरियन यानी सेनापति, उसका नौकर बहुत बीमार है और वो मदद के लिए यीशु के पास संदेश भेजता है।
सोचिए, एक रोमन अफसर जो वहां के यहूदियों पर राज करने, उन पर जुल्म करने के लिए तैनात है, वो एक यहूदी गुरु के पास मदद मांगने क्यों जाएगा?
यहीं पर इस कहानी की परतें खुलती हैं। सबसे पहले पात्रों को देखिए। वो सेंचुरियन एक क्रूर रोमन वर्ग से जरूर था, लेकिन उसने कैपरनाउम के यहूदियों के लिए अपने पैसों से एक आराधनालय यानी सिनेगॉग बनवाया था।
रुकिए, तो क्या ये कोई सेक्युलर दान था?
नहीं नहीं, ये एक पावर प्ले था।
अच्छा।
उस आराधनालय को बनवाकर वो उस पूरे यहूदी समुदाय का एक बहुत बड़ा पैटर्न बन गया था। अब वो पूरा गांव उसके एहसान के तले दबा हुआ था।
जाकर क्या कहा पता है?
उन्होंने कहा, वो व्यक्ति इस लायक है कि आप उस पर ये एहसान करें, क्योंकि वो हमारे लोगों से प्यार करता है और उसने हमारे लिए आराधनालय बनाया है।
वाह, मतलब वो अपने पैट्रन की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे वहां।
हाँ, और फिर कहानी का क्लाइमैक्स आता है जहां पिस्टस यानी विश्वास की बात आती है। जब यीशु उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं तो सेंचुरियन अपने दोस्तों को भेजकर कहता है कि आपको मेरे घर की छत के नीचे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी आपके पास आने लायक नहीं हूं, अब बस वहीं से आदेश दे दें और मेरा नौकर ठीक हो जाए। यहां उसने अथॉरिटी को समझ लिया।
यही वो सबसे अहम पल है। सेंचुरियन एक फौजी था, वो अथॉरिटी और कमांड के सिस्टम को गहराई से जानता था। वो जानता था कि जो व्यक्ति सत्ता में होता है वो जो बोलता है वो हो जाता है। उसे यीशु की विश्वसनीयता, उनकी ताकत पर पूरा भरोसा था
कि वो बिना वहां जाए भी ये एहसान कर सकते हैं।
बिल्कुल। और यीशु ने उसके इसी भरोसे उसकी पिस्टस की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा विश्वास तो उन्होंने इसराइल में भी नहीं देखा। इस एक छोटी सी कहानी में किसी को भी पेट्रन, ब्रोकर और पिस्टस का वो पूरा जाल कितनी खूबसूरती से काम करता हुआ दिखाई दे जाता है।
आज हम लोग जिस विषय की जो गहरी छानबीन कर रहे हैं उसे अगर मैं समेटूं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पहली सदी की दुनिया कोई सिर्फ किताबी या हवा हवाई दुनिया नहीं थी। ये एहसान, वफादारी, ब्रोकरेज और रिश्तों के ताने बाने से बुनी हुई एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया थी। उस दुनिया में कोई भी उपहार मुफ्त नहीं होता था। हर उपहार के साथ एक अदृश्य दौर बंधी होती थी जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती थी।
और उसी अदृश्य दौर ने उस समाज को बिना किसी आधुनिक संस्था के सदियों तक टिके रहने में मदद की थी।
तो आज यहां से जाते हुए एक विचार है जो मैं चाहूंगा कि श्रोता अपने साथ ले जाएं। आज के इस आधुनिक युग में हम लोग स्वतंत्रता और किसी पर निर्भर ना होने को यानी इंडिपेंडेंस को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं।
सही बात है।
हम सबको लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास बैंक्स हैं, इंश्योरेंस हैं, लेकिन जरा सोचिए उस प्राचीन दुनिया में जहां कोई सेफ्टी नेट नहीं था, वहां मुझे किसी की जरूरत नहीं है कहना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी थी।
बिल्कुल बेवकूफी थी।
वहां एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होना और इन एहसानों के जाल में बंधे रहना ही सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका था। तो किसी के लिए भी ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि अगली बार जब उनकी कोई मदद करे या वो किसी का एहसान लें तो खुद से जरूर पूछें क्या वो भी उस प्राचीन नृत्य का हिस्सा बन रहे हैं और क्या वो अपनी बारी आने पर उस एहसान को वापस लौटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस गहरी छानबीन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचते रहिए और सवाल करते रहिए।